फोर्थ काइंड ऑफ द पर्सनैलिटी, इसको कहते हैं मंतकी तजिया करने वाली शख्सियत, एनालिटिकल, यानी एनालिसिस किया जाता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनालिटिकल बहुत होते हैं, यानी नंबर एक यह है कि ये वो लोग होते हैं जो दूसरों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते, वो कहते हैं नहीं इसमें ये ख़राब है, इसकी नीयत ख़राब है, तुम्हें नहीं पता अंदर क्या है इनके, तुम्हें ये सारे ये धोखा दे रहे हैं, तुम तो हो ही बेवकूफ़। बल्कि अगर कोई बात इनके सामने आए तो ये दूसरों को चैलेंज करते हैं कि वो अपनी बात साबित करें, यानी बस इनका स्टाइल ऐसा होता है कि सबूत मांगते रहते हैं हर वक्त, बताओ मुझे, प्रूफ करो, और अगर सबूत पेश कर दे तो उसको दुरुस्त लगे तो मान लेते हैं, लेकिन अमूमन रद्द कर देते हैं। बहुत मंतकी से होते हैं, मंतक समझते हैं ना, अकल की बहुत ही वो गहराई के जिधर हर वक्त इफ्स एंड बट्स ही पड़े रहते हैं। आपके भी कुछ बच्चे होंगे, क्यों किया मामा, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, आप क्यों, यानी आप जो कहेंगे ना वो उसका उल्टा ही करेंगे काम। तो ये लोग जो होते हैं ना, मंतकी या अकली सबूत लेने का मकसद इनका किसी की तजलील करना नहीं होता, मतलब बड़ी ठोस बुनियादों पे मामले चाहते हैं, बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि मैथमेटिकल पर्सनैलिटीज ये होती हैं, और संजीदगी से ज़िंदगी को गुजारने वाले होते हैं। बस आप देखें कि किसी ने घर लेना होता है, वो दाना ढूंढना शुरू हो जाता है, वो कहते हैं नहीं जी पहले बैठो, कागज़ पे लिखो कितना लेना है, कितने का आएगा, कैसे करेंगे, यानी हर चीज़ पेपर प्लान चाहते हैं, पहले चीज़ें लिखो फिर उसके बाद बात करो। और इनको बहुत ठोस हकायक चाहिए होते हैं, सॉलिड प्रूफ्स। इनको कोई कह देना आई लव यू, वो कहते हैं सबूत पेश करो, अब सबूत कहाँ से लाए आप। फिर इसी तरह आप देखिए बड़े दो टोक होते हैं, इनके मामला दो टोक, इन्हें किसी काम में लुत्फ से कोई गरज नहीं होती कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये बहुत हकीकत पसंदाना ज़िंदगी गुजारते हैं। कई लोगों को अपने हस्बैंड याद आ रहे हैं, मुझे आपके चेहरों से दिख रहा है, देखिए फिर इसका कि मुझे भी थोड़ी सी समझ आ गई है ना, आपने कहना अब आई ये बात इनकी, मैं तो पहले ही कहती थी, आज आज पता चल गया, अभी अम्मा को फ़ोन करती हूँ। दो टोक, ये कहते हैं ये रोमांस वगैरह कुछ नहीं होता, सीधी बात करें, फिगर्स, आप कहते हैं घूमने चले, वो कहते इतने पैसे लग जाएंगे, टिकटें देखा कितनी महंगी, आप कहते होगी देखी जाएगी, ये नहीं पहले बताओ क्या है, यानी ये रियल बेस पे चलते हैं। और इनको गिनती 1 to ABC बहुत पसंद होती है, यानी ये कैलकुलेटिंग होते हैं, वो भी एक माइंड आगे आने वाला है, यानी इनको अदादो शुमार बड़े अच्छे लगते हैं, नपी तुली पैमाइशों पे रहते हैं, यानी ये बड़े नपे तुले से लोग होते हैं, कुछ पूरे कल्चर भी शख्सियात में ढले होते हैं। इंशाल्लाह जब आप ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे आपको साफ समझ आएगा कि ये पाकिस्तान के किस हिस्से के लोग हैं, ये दुनिया के किस हिस्से के लोग हैं। वेस्ट में पलने वाले लोगों का एक और माइंडसेट होता है, ईस्ट में पलने वालों का और है, अरब कंट्रीज वालों का और है, तो ये हर चीज़ हमारे ऊपर जो है ना बहुत ही असरअंदाज होती है। और आप कह लीजिए कि जब कोई मामला पेश होता है ना तो ये कहते हैं इसका पैटर्न बताए, मसलन आपकी कोई दोस्त है उसकी ये पर्सनैलिटी, उसको इससे कोई गरज नहीं ज़्यादा कि वही बात कि बिरयानी कैसी है, वो कहेगी रेसिपी बताओ। आप कोई अच्छा सा सूट पहन के उनके सामने गई, वो आपके पीछे कुरेद लगेंगी इनको कि लिया कहाँ से है, कितने का आया है, सेल पे था कि नहीं, यानी ये हमेशा इस किस्म की चीज़ों में होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। माइंड इतनी तेज़ी से चीज़ों को कैलकुलेट करता है कि ये नतीजे निकालते हैं, आप कह लीजिए कि लोगों और चीज़ों के बीच में खोज निकालने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हालात और वाकयात के नशेब व फराज पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं ऐसे लोग, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, और आप कह सकते हैं आज हमारी ज़ुबान में ऐसे लोगों को आप एक कोड वर्ड दे सकती हैं, और वो क्या है कि ज़रूरत पड़ने पर बाल की खाल निकालने वाले लोग, ये बाल की खाल वाले लोग हैं, प्याज की परतों की तरह खुलते ही जाते हैं। इनकी बीवियाँ 10 साल बाद भी कहती हैं वैसे मैं तनु समझी कोई नहीं, वो कहेंगे अच्छा होर 10 साल गुजार फिर अगो पता लगेगा मैं किया, यानी ये अंदर से खुलते बड़े गुन्ने टाइप लोग होते हैं ये, और सवाल पे सवाल करी जाएंगे, एक सवाल करे सवाल दर सवाल करते हुए, और ये बिल्कुल नहीं घबराते कि लोग हमारी इस क्वेश्चनिंग मेंटेलिटी से क्या सोचेंगे, कि वो कहते हैं मेरा दिल नहीं मुतमईन, मुझे मुतमईन करो, और इनको जब तक इनके हर सवाल का जवाब ना दे दें ये मुतमईन नहीं होते, वो कहते नहीं। एक और इनका कोड वर्ड रख दें, एनालिटिकल जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो क्या है, मामले की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं, अंदर गेट डीप रूटेड जाना चाहते हैं। बास औकात इनके साथ रहने वाले बहुत तकलीफ़ महसूस करते हैं इस बात से। एक और कोड वर्ड इनका ले लीजिए, अक्खड़पन। अब बास मर्द अगर ऐसे हैं तो उनकी बीवियों को बहुत दफ़ा शर्मिंदा होना पड़ता है इनकी वजह से, फिर वो पीछे होकर कहती हैं इनकी आदत है, माइंड ना कीजिएगा। कोई बेटा आप कैसा हो सकता है, अम्मा जो मर्जी उसको पापड़ बेल के बात अपने दिल की बताने की कोशिश करे, वो कहता है नहीं मैंने कह दिया तो मुझे तो ये नहीं ठीक लगा। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो दूसरों के सामने अपनी राय और तजिया शिद्दत के अंदाज में ना पेश करें। मतलब बाज़ लोग कहते हैं जी हम बड़े क्या कहते हैं उसको, हम दिल के खरे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, यानी वो कहते हैं हम बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, तो इनको ज़रा सी नरमी चाहिए। फिर इसी तरह इस पर्सनैलिटी के लोगों को कुछ जनरल मशवरे भी दे देते हैं कि ये क्या करें कैसा करें। पहली बात है कि ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसी जॉब इनको दी जाए या ये खुद करें जिसमें तहकीक हो। वो जितना सारा क्वेश्चनिंग का अंदर मादा था ना, वो तहकीक पे लगा दें, रिसर्च वर्क में रहे। मसलन रिसाले, किताबें, वेबसाइट, जॉब ही ढूंढ के लाओ, वेबसाइट से कोई चीज़ वो ढूंढ के ले आएंगे, और बुक्स के अंदर उनके नाम ढूंढने, अच्छा जाओ ज़रा ये चीज़ की मार्केट में इस पर कौन कौन सी बुक है, बड़ी खुशी से जाएंगे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ऐसे लोग जो हैं इनको चाहिए कि ये आप दोस्त बनाने के लिए अपने ही हम मिजाज लोगों को दोस्त बनाएं, क्योंकि दूसरों के साथ ये खुश ज़्यादा रहेंगे नहीं, और लाइक माइंडेड पीपल लिव टुगेदर वाली कैफियत है, तो इनको मज़ा ही बस अपने जैसे लोगों में आता है, बाकियों पर तो ये अमूमन तनकीद ही करते देखते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह इनको कोर्सेज करने चाहिए जिससे ज़रा सा इनके अंदर की वो क्यूरियसिटी जो है ना वो ज़रा दबती भी दिखे, जिनसे मालूमात में भी इजाफा हो, और जो इनका माइंड हर वक्त कोई खाना मांग रहा होता है ना सोचने का, वो इनको मिल जाए। फिर इसी तरह से ये है कि ऐसे लोगों को भी मुख्तलिफ कामों में, मसलन किताबें छापना, तदवीन करना, मैटर जमा करना, रीडिंग मटेरियल जमा करना, और एक लफ्ज़ बोल देते हो रिस्क मैनेजमेंट इनको दे दे। बहुत केयरफुल किस्म के लोग होंगे, यानी ना खुद रिस्क लेते हैं और दूसरों को भी जाने नहीं देते, और अमूमन ये ईमानदार भी होते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे फिगर्स कर लिए होते हैं ना। बस मैं रिलैक्सिंगली सुनाऊँ, मुझे हमारा एक बाबा याद आ गया, हम छोटे थे, वो बाबा उस वक्त बुढ़ापे के करीब जवान था, तो शुरू से हमने उसको अपने घर में देखा है। वो बहुत ईमानदार था, और इतना ईमानदार था कि जैसे घर बनवाया हमने तो अब्बू ने इसको सर पे खड़ा कर दिया मजदूरों के, कि ज़ाहिर है वो कारोबार में होते थे तो बाबा जी सारा दिन मजदूरों के सर पे होते थे, तो जब शाम को अब्बू आते थे ना तो वो मजदूर हाथ जोड़ते थे, साहब जी और से फलां साहब जी, ए बाबा जी नु साढ़े सिर तो कर दो, तो बाबा जी का जो लंबी चार्जशीट होती थी, हराम खाते हैं, बह के सिगरेट पीते रहते हैं, चाय पीते हैं। तो एक बड़ा अजीब सा वाक्या हुआ हमारे घरों में कि उस वक्त तो जब मेहमान आता था फिर मुर्गी आती थी, घरों में इतने दिन की पुरानी मुर्गियाँ नहीं होती थी, तो बाबा जी के कोई मेहमान आना था, खैर जब वो मुर्गी खोली धोई तो उसमें एक टांग थी। अब आपको पता है कि मुर्गी की एक टांग तो हो नहीं सकती, तो ऐसे ही बाबा जी को बाद में अम्मी ने कहा कि बाबा जी ने हमें कुछ नहीं कहा, वो एक लंबी सी बात की उसको, ठहर जाओ ज़रा, हमें नहीं पता उसके बाद क्या हुआ है। 2 घंटे गुजरे, बाबा जी आए एक टांग पकड़ी हुई, वापस गए उसके पास, उसको डांट के गाले हराम खाते हो, फिर किया क्या, बकायदा एक मुर्गी कटाई, वो दी लत कटा के लत लग गया। तो ये ऐसे मंतकी लोग होते हैं, यानी ये बहुत मुखलस भी बहुत होते हैं, लेकिन अगर इनको दूसरों के ऊपर डाल दें तो दूसरे बिल्कुल खुश नहीं रहते। ठीक है आप में से कोई, उनके लिए एक मैटर ऑफ प्रिंसिपल होता है ना, लेकिन दूसरों को ज़िंदगी हर वक्त प्रिंसिपल के वाली तो नहीं गुजारनी होती ना, तो लेकिन ये कि लोग इनके साथ कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी वो हैं ऑर्गेनाइजर्स, जी तरतीबो तंजीम पसंद अफराद, यानी ऐसे लोग जो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, अरेंजर्स कह लीजिए, ऑर्गेनाइजर्स कह लीजिए आप इनको, जैसे लोग मतलब वेडिंग प्लान्स बनाते हैं, पार्टीज अरेंज करते हैं, यानी इनके अंदर बहुत खूबी होती है। किसकी, नंबर एक देखिएगा, पहली पे आपने कहना ये मैं हूँ, यानी आपने आपको आपने कहना है, यानी ये मसाइल को बड़ा सुलझाते हैं, बड़े से बड़ा मसला आप इनको दिखा दें ये उसको सुलझाएंगे, कितना पेचीदा मसला हो इनको मुश्किल नहीं लगता। करते क्या है, उस चीज़ को सिरे से तरतीब देते हैं और उसको सुलझाते हैं, और ये लोग चाहते हैं कि वो जो कुछ करें वो अपनी जगह बेहतरीन हो, यानी हर काम को आसान दर्जे पे करना चाहते हैं। आप एक हल्का सा नाम इनका परफेक्शनिस्ट भी लिख सकती हैं, और इन्हें अपनी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर करने में बहुत मज़ा आता है, और ये जो कुछ करते हैं ना, अगरचे इनका कोई हदफ या कोई मंजिल ना भी हो, लेकिन फलां काम से वो कोई हदफ मुकम्मल करना चाहते हैं कि नहीं, यानी इनको चीज़ के मुकम्मल होने की इतनी फिक्र नहीं होती जितनी उसके आसान तरीके पे करने से होनी चाहिए। क्या इनका मिजाज है, काम हो भी और बेहतरीन भी हो, जिसको आप अपनी ज़ुबान में कह सकते हैं कि चल चलाओ का काम ये नहीं कर सकते, इनको ये चीज़ पसंद नहीं होती। कुछ लोग होते हैं ना, चलो कोई बात नहीं ना, खैर है बेडशीट बिछाई है, 2 कोने ढीले, 2 सीधे, कोई इधर से उधर लटका लटकी, ये कहते हैं नहीं बिछानी है तो ठीक बिछाओ, नहीं तो छोड़ दो, और इसी तरह से यानी आप देखिए कि बात भी करेंगे ना तो बड़ी सजा के संवार के बात करेंगे, ऐसे अंदाज से बात करेंगे कि जिसमें दूसरों को भी मज़ा आने लगे। और इसी तरह से आप देखिए कि इंसान की पर्सनैलिटी में जो चीज़ होती है ना वो एक में नहीं होती, वो बहुत सारी चीज़ों में होती है। मसलन अगर आपकी आदत है ना कि जो भी करना है अच्छा करना है, अब ये लोग अगर टीचर बन जाएं, मिसाल है, कभी वक्त पे पूरा नहीं करेंगे क्योंकि इनको अभी इनकी तसल्ली नहीं हुई। इन्होंने कहना कि भाई हम इधर छोड़ देंगे बाकी कल करेंगे, लेकिन ये नहीं करना कि रैप अप करके चलो जी, मिसाल है दौरे कुरान है, हमने 2 घंटे में पारा करना है, वो कहते हैं मैं नहीं करता, आप किसी और से करा ले, क्यों कि 2 घंटे में मैं इसका हक नहीं दे सकता। यानी अक्सर ये लोग अपनी बेहतर से बेहतरीन की कोशिशों में वक्त को पूरा मैनेज नहीं कर पाते। तो इन लोगों के लिए एक मशवरा ये भी है कि इनको अपनी टाइम मैनेजमेंट पे और जो चीज़ देनी है करनी है, मसलन अगर मिसाल है कि आप एक दावत बनाती हैं, आप क्यों 6 चीज़ें चूज़ करती हैं, एंड तक आप पकाती ही रहें। आपने अगर अच्छे तरीके से सजाना है, सैलड भी बड़ा प्यारा सजाना है और आपने उस डिज़र्ट पे भी टाइम लगाना है, तो फिर आप कुकिंग वो चूज़ कीजिए जो रियलिस्टिकली उस वर्क के अंदर फिट हो जाए। बस दफ़ा हम बना के बहुत डिशेस, हर चीज़ बेक होनी है, हर चीज़ में हाथ से काम करना है, नतीजा क्या होगा कि मेहमान आएंगे तो आपका भी किचन फैला होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग जो है वो अपने आप को थोड़ा सा गैर मुतमईन समझ लेते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ऐसे लोगों को एक और भी बहुत शौक होता है कह लीजिए, और वो क्या होता है कि हम जो काम करें वो दिखे भी। मसलन जो इनके साथ इनकी जो दोस्त है या इनके साथ होते हैं ना, वो अमूमन हैरान होते हैं कि आप इतना कुछ कैसे करते हैं, आप ऐसे क्या कर लेते हैं, एक ही आपकी ज़िंदगी, आपकी इतने डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट कैसे हैं, क्योंकि तरतीब है ना और तंजीम भी है, तो ये लोग एक साथ कई काम बड़े अच्छे कर लेते हैं। आप ये कह सकती हैं कि जो काम अच्छा करे ना, एक से ज़ायद उसको दे देना चाहिए, शर्त है कि वो बेहतरीन काम करें। लेकिन याद रखिए कि ये खूबी कभी कभी खामी में बदल जाती है, क्योंकि हर खूबी का एक दूसरा एज भी होता है। और सबसे बड़ी खामी यह है कि ये लोग किसी और अंदाज से सोचने के काबिल नहीं रहते। मसलन अगर इमरजेंसी कोई लास्ट मोमेंट चेंज करनी पड़े चीज़ नहीं करेंगे, मसलन मीटिंग मंसूख हो गई, अच्छा ऐसा करते हैं कि वो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई, तो ये लोग जो हैं इसको पसंद करने के लिए नहीं रहते, क्योंकि इन्होंने तैयारी तो दूसरी की हुई थी। बस परफेक्शनिस्ट के साथ जो कुछ आता है ना वो आप इसमें लिख सकते हैं, और ऐसे वक्त में ये फ़ौरन कोई अल्टरनेट ढूंढ रहे होते हैं कि जिसको ये अच्छे तरीके से करें, और रुकावटों को दूर करना चाहते हैं, कोई रेजिस्टेंस आ गई, कोई मुज़ाहमत आ गई, तो उससे अपने आप को ये थोड़ा सा फ़र्क करते हैं। करें क्या हम इनके बारे में, यानी अपने ऊपर लग के या दूसरों पे देखें तो कुछ चीज़ें इनके साथ शेयर कर सकते हैं। इनको वो काम चाहिए, वो माहौल और शोभा जहाँ लगी बंधी रूटीन के साथ काम हो। सुबह गए, चाबी खोली, दरवाज़ा खोला, बैठे, खोला, किया, यानी इनको इस तरीके से काम मिले कि वहाँ नया काम हो लेकिन उसमें कोई इमरजेंसी ना हो। आप ये कह सकते हैं कि इनको ऐसा काम चाहिए कि रोज़ाना कुछ इनको नया करने को मिले लेकिन इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में कोई ना डाले। फिर इसी तरह जहाँ पेचीदा मामले बहुत से हों और इनको कहा जाए कि आप इनको हल कीजिए, मसले मसाइल का हल करें, तो इसमें इनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनमें ये खूबी भी होती है, झगड़ों में फैसला करवा सकते हैं। जाहरी बात है कि अब वो पर्सनैलिटी दूसरी तरफ से कैसी है, लेकिन ओवरऑल एक नॉन मुस्लिम भी ऐसा हो सकता है, एक मुस्लिम भी हो सकता है, एक नेक बंदा भी हो सकता है, एक बद भी है। फिर इसी तरह ऐसे लोगों को चाहिए कि एक फहरिस्त बनाएं जिसमें अपने काम की जगह को बेहतर बनाने के लिए दूसरों से जो मशवरे लेने होते हैं उसको लिखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इनका लेवल बहुत ऊंचा होता है तो दूसरे लोग इस लेवल तक नहीं होते, तो इनको चाहिए, बस आप माँ हैं, बेटियाँ आपकी हो सकता है ऐसी ना हो, तो आप एक दिन बैठें माँ बेटियाँ और आप बैठ के बात करें कि बेटा आए ज़रा घर की क्लीनिंग को डिस्कस करते हैं, ये डस्टिंग कितनी दफ़ा करनी है, वॉशरूम कब धोने हैं, बर्तन कौन धोएगा। तो जब ये अपने माइंड को अपने साथ काम करने वालों के साथ डिस्कस कर लेते हैं तो काफ़ी सारे मसाइल उसी में हल हो जाते हैं। और ऐसे तरीके भी तलाश करने चाहिए जिनकी मदद से ये मज़ीद काम करने के काबिल हों, जो इनके गोल्स हैं वो जल्दी पूरे हों। इसका नाम मीन मेख रख लीजिए, मीन मेख में पड़ने की वजह से अक्सर वक्त पे इनके गोल पूरे नहीं होते। फिर इसी तरह बाकायदगी से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर अपनी स्किल्स को इनको लगाना चाहिए, जिससे इनकी जो डिसिप्लिन की और तरतीब की सलाहियतें वो मज़ीद निखरेंगी। इनको क्या करना चाहिए, मतलब एक मर्द है उसको ट्रेवल एजेंट होना चाहिए, उधर से फ्लाइट ली, उधर गए, उधर स्टॉप ओवर, उधर निकले, उधर गए। इसी तरह इवेंट मैनेजर, आपका इवेंट है कैसा चाहिए, कितने लोग आएंगे, खाना कैसा चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स का काम ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। डायरेक्टर्स बन सकते हैं, सुपरवाइजर्स बन सकते हैं, ऑडिटर्स बन सकते हैं, यानी मेन इनके अंदर जो खूबियां उसको वैसे यूज़ करें। तो इसके बाद है जी अगली पर्सनैलिटी हमारे पास, पुरयकीन शख्सियत। ये तो बहुत ही खूबसूरत सी एक पर्सनैलिटी है, यानी फुल ऑफ बिलीफ। ये कौन लोग हैं? नंबर एक, इनको अपनी वैल्यूज़ बड़ी अजीज़ होती हैं, यानी इकदार या वैल्यूज़ को बहुत अहमियत देते हैं, बहुत ज़्यादा बाखलाक होते हैं, और दूसरों के मुकाबले में हमेशा अपना किरदार अच्छा दिखाते हैं। यानी इनको अपने नौकर से, अपने ड्राइवर से भी बात करनी पड़े तो बहुत इज्जत करते हैं। ऐसे लोग अपनी फैमिली और इंसान दोस्ती और अच्छे किरदार को बहुत अहमियत देते हैं, और रूहानियत पसंद भी होते हैं। देखिए, जो बंदों से अच्छा होगा ना, उसके अंदर रूहानियत ज़रूर होगी, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप अल्लाह ताला का कुर्ब पाएं और उसके बंदों के साथ अच्छे ना हों। फिर इसी तरह ज़िंदगी में जो लोगों को मसाइल पेश आते हैं, इनके लिए वो बहुत अहम होते हैं। और बड़ों की इकदार, हमारे बड़े ऐसे थे, हमारे नाना दादा ऐसे थे, ये चीज़ें इनके लिए बड़ी अहम। अक्सर अपने बच्चों को ये बातें सुनाते हैं, हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम ऐसे थे, वैसे थे, और कभी कभी अपनी वैल्यूज़ को बचाने के लिए अपना नुकसान भी कर लेते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, हम अपनी इकदार पर आँच नहीं आने देंगे। एक और चीज़ इनकी नोट करें कि ऐसे लोगों को पैसे या शोहरत से कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो कहते हैं मिल गया तो ठीक है, शोहरत है तो इट्स ओके। हमारी नज़र में अहमियत पैसे या शोहरत की नहीं है, बल्कि कामयाबी दौलत और शोहरत से बड़ी चीज़ है उनके लिए। और जब कभी ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कोई मसाइल, कोई मुश्किलात पेश आते हैं, तो दूसरों के मुकाबले में कम घबराते हैं। क्यों? इनके पीछे वैल्यूज़ होती हैं। हमारे वालिद पे जब कोई मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने क्या किया? ओके, मैं भी यही करूँगा, कतई नज़र इसके कि इससे उनको कोई नुकसान है या फ़ायदा। और ज़िंदगी में सबके ऊपर ऊंच नीच आती है। अल्लाह ना करे अगर ये ज़माने के किसी नशेबो फराज का शिकार हो जाएं, तो ये गिरते नहीं हैं, स्ट्रेस में नहीं जाते, डिप्रेशन में नहीं जाते, बल्कि अपनी वैल्यूज़ को थाम कर एडवर्सिटी को पॉजिटिविटी में ले आते हैं। कोई बात नहीं, अगर ज़िंदगी में एक हो ही गया सानहा तो कोई बात नहीं, बीमार हो गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, हमारे जिस्म में ताकत आ जाएगी। तो कह लीजिए कि इनके अंदर एक यकीन भरा होता है। और लिखिए, जिसके अंदर जितना यकीन होगा वो उतना मुतमईन होगा। आप कह सकते हैं कि ये मुतमईन लोग हैं। मुस्तकिल तरजीह इनकी ये होती है कि हम खुद भी मुतमईन रहें, हमारे साथ वाले भी मुतमईन रहें, और पूरे एतमाद लोग होते हैं। अपने इर्द गिर्द भी ये कभी ऐसे हैंके पैंके लोगों को पसंद नहीं करते, बामकसद ज़िंदगी गुजारते हैं और वही काम करने की कोशिश करते हैं जो इनकी इकदार और इनके मकसद हयात से हम आहंग होता है। अब अगर आप खुद हैं या आपके बच्चों में या इर्द गिर्द कोई है, तो क्या किया जाए? पहली बात तो ये है कि ऐसी जॉब तलाश कीजिए कि जिसमें इकदार की बहुत अहमियत हो। मसलन देखिए, फलाही खिदमत, वेलफेयर के काम कीजिए, रिलीजियस काम कीजिए, ऐसा कोई इदारा, कोई कह लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों की बहुत ज़्यादा इस जज्बे के साथ खिदमत करे कि उससे उनके वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो इनको वो बहुत अच्छे लगते हैं। फिर इसी तरह इनको चाहिए कि लोगों की मदद करें, खिदमत करें। ये ना करें कुछ दिन किसी के लिए कुछ, तो इनको बेचैनी होने लगती है। जितना ज़्यादा ये दूसरों के लिए एक रिसोर्स बनते हैं, ये उस रात ज़्यादा खुश होते हैं। बिस्तर पर लेट के ये सोचते हैं कि आज हमने कितने लोगों को फ़ायदा दिया, उतना ज़्यादा इनको उससे खुशी मिलती है। फिर इनसे वो काम लेना चाहिए जो वाकई वैल्यूज़ को अहमियत दे। बस आप देखिए ना, कि मिसाल दे रही हूँ कि अगर हमारा तो पढ़ने लिखने का ज़्यादा काम है, तो बच्चियों की तरबियत करना, वो बिगड़ा हुआ माहौल, वक्त का जो रंग है, जो इर्द गिर्द है, ये अगर उन बच्चियों के साथ बैठें तो उनको पीछे से असलाफ से जोड़ना और पहनने ओढ़ने, बातचीत करने, उठने बैठने पे ये बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनको यकीन है ना। देखिए, मुझे नहीं यकीन तो मैं आपको कैसे दूँ? तो यकीन वाले लोग बहुत कीमती होते हैं, उनको हमेशा ऐसे कामों में डालना चाहिए कि जिससे इनको फ़ायदा हो। फिर इसी तरह किसी स्कूल में, ऑर्फनेज जैसे यतीम खाना है, हॉस्पिटल्स वगैरह में इनको वॉलंटियर करना चाहिए, और ऐसे दोस्त इनको बनाने चाहिए जो वाकई इन्हीं की वैल्यूज़ रखते हो। ये कभी भी थर्ड क्लास बंदे के साथ नहीं जिएंगे। कोई गाली दे, ये फ़ौरन रोक दे, चाहे बीवी है, मियाँ की गाली नहीं सुनेगी। क्यों? क्योंकि उसको अपनी वैल्यूज़ पे आ रही हैं, क्योंकि आप जनाब वाले लोग होते हैं, बेइज्जती नहीं पसंद करते, ना किसी की करते हैं ना अपनी पसंद करवाते हैं। और इसी तरह से आप देखिए कैसे लोग जितना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स पे काम करेंगे उतने ज़्यादा कामयाब होंगे। फिर इसके बाद आप देखिए कि जब आपने ये शख्सियत भी देख ली तो एक और शख्सियत ले लें, ये बड़ी कमांडिंग है। 7th नंबर, ये है कमांडर्स, हाकिमाना शख्सियत। सास तो नहीं याद आई किसी को, अक्सर बहुओं का ख्याल है कि हमारी सासें ऐसी थी, हालांकि जब वो सासें खुद बहुएं थीं तो उनका अपनी सासों के बारे में भी यही ख्याल था। लेकिन बहरहाल ये कमांडिंग पर्सनैलिटीज होती हैं। ये लोग क्या चाहते हैं? नंबर एक, इनको जिम्मेदारी दी जाए, ये इंचार्ज बने, प्रोजेक्ट इनके हाथ में हो। ये लोग अपने ख्यालात दूसरों पे मुसल्लत करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, यानी जब कोई राय पूछे बिला झिझक अपनी राय का इजहार भी करते हैं। और ये लोग जब अपना कोई गोल तय कर लेते हैं, हदफ इनका हासिल होता है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठते, क्योंकि रूलरशिप है ना माइंड में, हुक्मरानी का एक जज्बा है। और बहस करने से नहीं घबराते, इन्हें बड़े बहसी होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि किसी मसले को हल करने के लिए बहस पहला कदम है। फिर जाहिर बात है कि जब तबीयत में ऐसी है तो बहुत पुरएतमाद होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। जब लोग ज़िंदगी की नाखुशगवारियों का सामना करने से घबराते हैं तो ये लोग हंसी खुशी इसका सामना करते हैं। अंदर मजबूती होती है ना तो बंदा बड़ी बड़ी चीज़ें बर्दाश्त कर जाता है, अंदर से जो कच्चा होता है ना वो ज़रा सी चीज़ पे भी बिल्कुल ही पिचक जाता है। तो ये लोग बल्कि तकलीफ़ों में, तलखियों में, मसाइल में ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि हर वक्त वो माइंड अंदर एक अदालत बना के बैठा है ना, कौन ठीक कौन गलत, किसने क्या किया, किसका कसूर था। इसी तरह आप देखिए कि ये जो हाकिमाना शख्सियात होती है ना, ये दूसरों से भी ये तवक्को करते हैं कि ये ज़िंदगी के मसाइल और चैलेंजेस से मुंह मोड़ने की बजाय इनको तस्लीम कर लें, और अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद को खतरात लेने पर उकसाते हैं, यानी ख़तरा कबूल कीजिए, टेक अ रिस्क, गो हेड, नो पाने। और इन्हें डराते भी हैं, लेकिन मकसद पीछे करना नहीं होता बल्कि जुरत पैदा करना होता है। यानी कह लीजिए कि इन लोगों के लिए एक लफ्ज़ बोलती हूँ, चैलेंज। ज़िंदगी इनके लिए एक चैलेंज होती है, और वो कहते हैं कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेस, जीना कोई आसान थोड़ी है, मुश्किलात के बग़ैर तो मज़ा ही नहीं आता। और अगर कोई इन्हें अपनी मर्ज़ी का किताबे करना चाहे तो ये आसानी से हाथ नहीं आते। बस अगर एक औरत की पर्सनैलिटी में ये आदत आ गई, वो कभी अपने शौहर के मुताबिक नहीं चलेगी। इसी तरह अपोजिटली भी ले लीजिए, कुछ मर्दों के मिजाज में एक हुक्मरानी होती है, वो उनको बड़ी से बड़ी कह लीजिए कि इंटेलेक्चुअल बीवी भी मिल जाए, वो कहेंगे चुप कर, तुझे अकल नहीं, तू समझती नहीं है। फिर इसी तरह से ये हर वक्त ठोस दलील ढूंढ रहे होते हैं, ठोस। और अगर इनको मिल जाए तो बिस्मिल्लाह, फिर मान भी जाते हैं, क्योंकि इनकी सारी नज़र ही दलील पे होती है। और हाकिमाना मिजाज है लेकिन अना परस्त नहीं होते, ये भी एक अच्छी बात है, अना का मसला नहीं बनाते। हकीकत पे रहते हुए अगर इनको कोई बात समझ आए तो ये बात समझते हैं। कुछ लोग इनके वे ऑफ टॉकिंग से ना इनको अक्खड़ और सख्त मिजाज भी समझते हैं, लेकिन अंदर से ये ऐसे नहीं होते। ऊपर से स्टाइल होता है बहुत सीधे सीधे, ठक 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 करने वाले, लेकिन बहरहाल ये एक पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी है। दूसरे जोड़ को इधर जोड़ दीजिए तो बहुत खूबसूरती भी है। ऐसे लोगों को बहुत अच्छे मशवरे हम दे सकते हैं। मसलन इनको ऐसा काम तलाश करना चाहिए जिसमें ये नुमायाँ हो और दूसरों पे असर डाल सके। मसलन अगर आप इन्हें कह देना, चले जी आप ये मेरे बच्चों की तरबियत करें, आप ज़रा ये मेरे घर को ज़रा मैनेज कर दें, या जैसे भी बाहर की दुनिया में मर्दों के काम है, तो ये बहुत खुश होते हैं। अब मेरा इंस्टीट्यूट सही नहीं चल रहा, ज़रा आप इस पर मदद कर दें, अच्छा मेरी फैक्ट्री ठीक नहीं है, मेरे वर्कर्स बड़े ढीले ढाले हैं, तो ये बड़ी खुशी खुशी काम करते हैं। इनको एक मशवरा ये दिया जा सकता है कि जब बात करें तो अपने लहजे को नोट करें। कभी कभी इनका अंदर का एतमाद यकीन इनकी ज़ुबान के अंदर एक सख्ती डाल देता है, जारहियत कह लीजिए। तो इन्हें चाहिए कि ज़रा सी मीठी नरम बात करें, बात सही कर रहे होते हैं लेकिन उसको ज़्यादा सख्त करने की वजह से फिर उसमें एकदम जारहियत का एहसास होता है। इनको अपने ताल्लुकात दूसरों से बेहतर बनाने के लिए अपने अंदर नरमी लानी चाहिए, और जब कभी सेंसिटिव मैटर्स यानी हसास मामलात पर अपनी राय दें तो बात दलील से करें लेकिन नरमी से करें। मैं इसकी छोटी सी मिसाल जो समझती हूँ वो ये है, डॉक्टर्स। आप देखिए इंजेक्शन खुद ही बहुत तकलीफदेह चीज़ होती है, और अगर उसको सख्त हाथ से लगाया जाए तो मरीज़ की बाजू भी सूज जाती है। इनको चाहिए कि अगर ये अपनी दलील का और अपने यकीन का कोई इंजेक्शन लोगों को लगा भी रहे हैं ना, तो हाथ होला रखें, क्योंकि बाज़ हम कहते हैं मैं सच्चा हूँ, मैं हक पे हूँ, लेकिन वो हाथ बड़ा सख्त होता है कि जिसकी वजह से दूसरों को फिर उसके साथ कह लीजिए कि कंफर्टेबल फील नहीं होता। अक्सर आप कहते नहीं मैं तो हक पे थी, फिर भी नहीं माने। यदि घर में आप किसी बुजुर्ग को जेहन में ले आइए, मैं की क्या, सही कहा मैंने, हक बात की है जी, अम्मा जी हक बात कही है, पर आपने ज़रा ज़्यादा ही ज़ोर लगा के कह दी है। तो इनको चाहिए कि अल्लाह ने अगर इनको वाकई एक लीडरशिप पर्सनैलिटी दी है, हाकमियत दी है, तो ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर हम्बलनेस लाएं, और आप देखिए कि ये बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी बन सकती है अगर इसमें थोड़ा सा वो नरमी का एक पीस डाल दिया जाए। ऐसे लोगों को क्या काम करना चाहिए आप बताएं, हाँ क्या जहन में आता है, यानी अगर एक मर्द है और उसको प्रोफेशन चूज करना है तो क्या करें? पुलिसमैन, फौज का अफसर, किसी कंपनी का डायरेक्टर, और इसी तरह से रियलिटी मीन ऐसा शख्स जो एक अपर हैंड पे हो। तो चूंकि यकीन है ऐसे बंदे को वाकई ऐसे शोबे ज़रूर देने चाहिए कि जिसमें इनको अपनी ये हाकमियत जो है इसको पूरी करने का और इन चीज़ों को मनवाने का मौका मिल सके। चलिए एक और करके फिर आपसे मशवरा भी लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट लीजिए कम्युनिकेटर्स, ये बहुत प्यारी स्किल है, इब्लाग की माहिर शख्सियत। इब्लाग क्या होता है? कम्युनिकेट। आज के दौर में आप देखिए ज़राए इब्लाग क्या हैं, आप एक क्लिक करते हैं, एक सिर्फ वाईफाई कोड मिल जाता है तो आप पूरी दुनिया से हुक्ड अप हो जाते हैं। कुछ पर्सनैलिटीज़ बहुत कम्युनिकेटिंग होती हैं, ये लोग अवामी लोग होते हैं। लिख लीजिए अवामी स्पीकर का नाम सुना होगा, अवामी राय, अवामी लीडर, ये लोगों में रहना चाहते हैं, बात करना, लोगों के मसाइल पे बात करना इनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कॉलम लिखें, अखबार में आर्टिकल दें, किसी जगह जाकर ये स्पीच देना पसंद करते हैं, यानी इनको लोगों के साथ कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा लगता है, और इनकी बात लोगों को बड़ी अपील करती है, यानी सुनने वाले इनकी बात सुनते ही रह जाते हैं। कुछ लोग तहरीर में होते हैं, कुछ तकरीर में होते हैं, दोनों में ये बहुत ग्रैपी होते हैं, क्योंकि इनकी स्किल ह्यूमैनिटी है। लोग देखिए ना, कुछ लोग मशीनों में रहते हैं, जैसे अभी शुरू में पीछे हमने एक सेशन किया जिसमें हमने फोर टाइप पर्सनैलिटीज देखी थी। कुछ इंट्रोवर्ड किस्म के लोग होते हैं, अंदर ही अंदर घुनने ही घुनने। कुछ एक्स्ट्रोवर्ड होते हैं, कुछ को मशीनें चलानी बड़ी अच्छी लगती हैं, हम तो सारा दिन रात यही काम करते हैं लोगों के साथ डीलिंग, किसको क्या काम, किसको कुछ, कहते हैं जी हमें कंप्यूटर का सारा काम दे दें पर हमें माइक पे ना आने दीजिए। तोबा तोबा, हम तो माइक पे जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं। और आधे लोग क्या होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये स्विच लगाना किधर है, उनको ये तक नहीं पता होता कि स्विच लगता किधर है, मशीनों से घबराते हैं, बंदों में बड़े कंफर्टेबल होते हैं। ये जो लोग हैं ना, ये लोगों में खुश होते हैं। हो सकता है कि इनकी ज़ीरो हो कंप्यूटर स्किल्स, इनको हो सकता है कि वाईफाई कोड भी ना डालना आता हो, इनको कुछ भी ना करना, इनको कोई भी ABCD कुछ भी ना आती हो, लेकिन लोगों में बहुत अच्छे रहते हैं। इनका दिमाग लोगों को सोचता है, आज के मसाइल क्या है, पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, इस वक्त दुनिया के क्या मसले हैं, ये कोरोना वायरस किधर से आया, ये किसने बनाया, ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। कह लीजिए कि इनके ख्यालात बड़े खुश्क हो जाते हैं कभी कभी, इतना ज़्यादा इंसानों के बारे में सोचते हैं तो लोग भी फिर इनमें दिलचस्पी लेते हैं। आप कह लीजिए कि खुश्क मालूमात को ये लोग कहानी में बदल देते हैं। आपके घरों में भी कोई एक करेक्टर ऐसा होगा, मसलन 4 दिन कहीं बाहर रहकर आए, फिर आए बच्चे भी बैठे सुनाए क्या हाल है, फिर वो कहानी बना के सुनाते, फिर मैं गया, फिर एयरपोर्ट पे गए, तो वाकई बंदा ना उसमें खो जाता है। ये बिल्कुल वैसे लोग होते हैं कि ग्रैब कर लेते हैं, लोगों को इनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत दिलचस्प होते हैं, और कभी कभी आप कह लीजिए कि लोग इनको बुलाते हैं महफिलों में, शादियों में। कभी कभी आपने कुछ लोगों के मुंह से सुना होगा कि फलां आए तो रौनक नहीं होती, फलां के आने से एक दफ़ा महफिल सजती है, ये बिल्कुल उसी किस्म के लोग होते हैं। और डिपेंड करता है कि वो किस कैलिपर का बंदा है, लेकिन अमूमन इनको ड्रामाई अंदाज और बहुत ही ज़्यादा लोगों को इस तरह से डील करना आता है कि हर बंदा इनके साथ कंफर्टेबल फील करता है। अब ये क्या करें, ऑफ कोर्स इनको जो प्रोफेशन चाहिए उसमें कम्युनिकेशन होनी चाहिए, पीपल डीलिंग में हो, किसी भी इदारे में अगर ये कस्टमर सर्विस पे चले जाएं दी बेस्ट लोग होंगे, यानी आपको अपने इंस्टीट्यूट में, आपको अपने किसी प्रोजेक्ट में अगर किसी को कस्टमर सर्विस देनी है वो इस पर्सनैलिटी को देनी चाहिए। ऐसे मुतमईन करके अगले को आएंगे, अगला कहेगा नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हमें भी पता है इतने लोगों में ऐसे हो ही जाता है ना, यानी इनको ह्यूमन रिसोर्स बनाए। ये किताब भी पढ़ते हैं ना तो आहिस्ता आवाज से नहीं पढ़ते, ऊंची आवाज से पढ़ना पसंद करते हैं। और इनको ये सुनानी चाहिए, स्टोरी टेलिंग है, या अगर आप इनको कोई टॉपिक देते हैं, मतलब दरसो तदरीस में है, तो आपको ऐसे लोगों को एज अ टीचर सामने लाना चाहिए, इनको एज अ माई कोऑर्डिनेटर सामने लाना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर ये स्किल है और ये ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। और ये अमूमन आई कॉन्टैक्ट बहुत करेंगे, दूसरों के साथ बात करते हुए उनकी आंखों में देखना, उनको फील होता है, बॉडी लैंग्वेज भी यूज़ बहुत करेंगे। और आप देखिए कि इनको पैसे की नहीं परवाह होती, इनको लोगों के साथ इस तरीके से अगर घुलने मिलने का मौका दे दिया जाए और ये कुछ उनके साथ अच्छा मामला करे, तो यही इनकी पे होती है, क्योंकि इन्होंने कुछ तो करना ही है। तो इनके लिए फिर वही काम है, पब्लिक रिलेशंस बहुत बेस्ट इनका काम होगा। जैसे आजकल एंकर्स हैं, टीवी शोज़ हैं, उसके अंदर किसी को आना है, सोशल मीडिया पे कोई काम करना है, ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स करने हैं, कोई फ़ोन कंपनी है तो उन्होंने किसी जगह अपना कोई नाम दिया जी कि हमें कॉल कीजिए, कोई एयरलाइंस है, इससे सियासी रहनुमा ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत वोट मिलते हैं इनको, इतनी अच्छी अच्छी तकरीरें करेंगे, लोग सोचेंगे हमारे सारे मसलों का यही हाल है। सेल्समैनशिप बहुत अच्छी करते हैं ऐसे लोग, रिसेप्शनिस्ट बहुत अच्छे होंगे, और कह लीजिए कि किसी भी जगह अगर किसी को रिप्रेजेंट करना पड़े, मतलब कि हमारी तरफ से कौन जाए उधर, तो दे आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, के इनके साथ लोग अपने आप को मतलब बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। किसमें है ये खूबी, चलो ये ज़रा देखते हैं। हमने अभी नेक्स्ट जो पांच देखी हैं, तीन तो पहले डिस्कस की, एनालिटिकल, ऑर्गेनाइजर्स, कम्युनिकेटर्स, कमांडर्स एंड फुल ऑफ बिलीव। आप लोग क्या कहते हैं, कितना कुछ जानना, कोई बात अपने बारे में कीजिए जी, आप कोई सवाल कर लें, कोई बात, सिर्फ आपको मौका दिया जा रहा है इंटरेक्शन का, जो सुना है उसे फ़ायदा हो रहा है, माशाल्लाह, लड़ाई तो नहीं होनी आज घर जाके, कोई आपको ये लगा कि चलो शुक्र है मैंने आज सुना है तो मैं कुछ चेंज करूं अपने आप को? हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। आज आपको था कि इसका शायद सातवां या आठवां सेशन है जी हमारा, और जो इसका पॉजिटिव फीडबैक है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितना मैटर है ना ये सब इंग्लिश जुबान से ट्रांसलेटेड है उर्दू में। $500 का एक कोर्स होता है, 2 से 2.5 घंटे का। हम लोग अमेरिका में जब था स्कूल, पहला स्कूल तो उधर ही था माशाल्लाह, वहाँ लोग किसी को बैठने नहीं देते जब तक उसकी पूरी ट्रेनिंग नहीं होती, तो हमारे बहुत अच्छे ब्रदर है इस्लामिक, वो भी इंस्टीट्यूट है उनका, तो उन्होंने हमारी एक रिसेप्शनिस्ट को दिया था एक सेशन, और उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि इधर तो वो हमारे नाम की मोहब्बत में हमें फ्री दिया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस सेशन के लिए जो मैंने सिस्टर आपको दिया है मैं $500 चार्ज करता हूँ, क्योंकि आप एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और आप खुद सोचें ना कि जब हम दीन का काम करें और इन चीज़ों को ना देखें, मैं आपको मिसाल देती हूँ कि आप यहाँ सेम्सबरी जाते हैं और एस्ट्रा जाते होंगे, आज से अभी अभी पूरा पढ़ेंगे ना जब, तो आप खुद ब खुद ही सोचने लग जाएंगे, आप बिहेवियर फील करें, मसलन जो टिल पे खड़ी होती हैं सिस्टर्स, कभी आपने देखा है कि जो ही आप आते हैं तो वो आपको सब एक ही तरीके से देखते हैं, इनको ये तक सिखाया जाता है कि आपने खड़े होना है तो आपका आई लेवल अगला जो कस्टमर है उससे कितना हो, कद छोटा है बड़ा है, आंखें कितनी खोलनी है, कितनी छोटी करनी है, पहले उसको स्माइल करना है, उसको एक हल्का सा फ्रेंडली टच देना है। एक सिस्टर थी तो उसने बताया कि जो चेंज आते हैं ना बाद में, कोई नोट देता है कि 20 पाउंड ले लें तो उसमें से मतलब उसको 12 वापस मिले, बड़ा नोट नीचे उसके ऊपर छोटा फिर छोटा, वो आपको कैसे पेश करते हैं आप ज़रा नोट कीजिएगा, इन लोगों को ये भी सिखाया होता है। मैं एयर होस्टेसों से भी बड़े दुख सुख करती हूँ, वो भी बहुत कुछ बताती हैं, ये पूरा एचआर है आज, एक पूरा कह लीजिए कि एजुकेशन का ये एक पूरा सेटअप है, तो हम दीन के नाम पर कहते हैं एक होता क्या है, दीन तो हमारा ये सब कुछ सिखाता है, अच्छी पर्सनैलिटीज ही तो अल्लाह के नबी छोड़ के गए। नबी का जो बहुत बड़ा कारनामा है वो ये था कि आपने रॉ को कुंदन बना दिया, डायमंड जब निकलता है अपनी कह लीजिए कि माइन में से तो काला होता है, कार्बन है, प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है तो वो फिर ढलता है, और उसके बाद जब जौहरी उसको कट्स लगाता है तो वो हीरा बन जाता है। और मैं अक्सर सोचती हूँ, ये हर वीक पढ़ाती हूँ ना, तो मैं हर वीक के टॉपिक के पहले और बाद में यही सोचती हूँ कि दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है लोगों का, उनको अभी तक खुद को नहीं पता होता वो है क्या। अक्सर जो हम इरीटेटेड होते हैं, जो हम अक्सर परेशान रहते हैं, या हमारा दूसरों से क्लैश है, इसको आप ये ना सोचें कि हम अब दीन का काम करें, हमारा एक इदारा है, इंस्टीट्यूट है, ये तो है ही है, मैं तो आपके लिए कर रही हूँ, लेकिन यकीन करें इसका ताल्लुक सियासतदानों से है, इसका ताल्लुक पूरे आपके मुल्कों में, जो पूरे जिस जिस स्टोर में आप किसी ऑफिस में जाते होंगे, इधर भी कुछ होंगे, हॉस्पिटल में जाते हैं, एक एक चीज़ के साथ इसका ताल्लुक होता है। और स्पेशली जब मिसाल है BA.com को कॉल करते हैं ब्रिटिश एयरवेज को टिकट चेंज करने का, उस बंदे का जिसने बात की वो बंदा उस वक्त असल में ब्रिटिश एयरवेज है, आपको उसका नाम नहीं पता, शक्ल नहीं पता, अगर वो अच्छा बोलेगा ना, आप कहेंगे दिस इज़ वेरी गुड एयरलाइन, देखिए वेरी गुड कस्टमर एयरलाइन। और कहते हैं कि बंदा गुड़ ना दे, गुड़ जैसी बात कर ले। आप इन लोगों का कभी नोट करें, बल्कि मुझे याद आया अभी बिल्कुल शुरू की बात है, अमेरिका में थे हम लोग, तो शुरू से यही सुना था मेरे हस्बैंड को, जिनको सऊदी अरब जाने का शौक है। अरामको एक बहुत बड़ी कंपनी है, ऑयल कंपनी है, तो अमेरिका से उस दौर में बहुत सारे लोग जो रिलीजियस माइंड के थे, वो हम शौक रखते थे कि हमें अरामको में जॉब मिले। और फिर सऊदी अरब में वो एक पूरा एक टाउन है खुबर के पास, जहाँ सिर्फ अमेरिकन नेशनल्स होते हैं, उन्हीं के स्कूल बच्चे सब वो हैं। इनको भी बड़ा शौक था, तो खैर जी के टेस्ट देते हैं, उसका एक रिक्वायरमेंट होता है, कुछ उनके क्राइटेरियन के अंदर दो तीन चीज़ें होती है। तो जो बात मैं आपको एंड अप पे खुलासे पे देने लगी हूँ कि उन्होंने सब कुछ किया, मैं वैसे ही नई नई गई थी, इंग्लिश कोई इतनी अच्छी भी नहीं थी, समझ आई नहीं आई, तो मैं साथ ऐसे ही उनके थी, बहुत अच्छी तरीके से सब डील हुआ, शेक हैंड, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं खुश, मैंने कहा इनको रामको में जॉब मिल गई है, मुझे अल्लाह जानता है, अब मैं वहाँ तो नहीं पूछ सकती थी, तो मैं बड़ी खुश। तो गाड़ी में आकर इन्होंने कहा कि उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से नो कहा है जी, तो मैं उस नो पे मर गई कि अल्लाह नो करे, कोई तो ऐसी करे, अल्लाह क्या कहता है और हम क्या करते हैं ना ज़िंदगी के मामलात में, देखिए ना ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। देखिए आपकी बात, जज़ाकल्लाह खैर, आप बहुत सही जो बात कह रहे थे, अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ के अपने अंदर रखते हैं ना, आप कभी अपने बच्चे को हाफिज़ नहीं बनाएंगे जब तक आप उसकी पहले पर्सनैलिटी नहीं देखेंगे कि वो हाफिज़ का हिफ्ज़ कबूल भी करेगा कि नहीं, उसके अंदर वो चुलबुलापन है, वो चीज़ों को कीप ही नहीं करता, वो अभी उसका माइंड ही स्ट्रांग नहीं, आप उसको हाफिज़ कैसे बना सकते हैं? आप हर बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाएंगे। अक्सर पर्सनैलिटीज़ हमारी केली इस पे हो जाती हैं कि हमें गलत सांचे में डाल दिया जाता है, और माँ को अगर इतनी समझ हो, बाप को, उस्तादों को, टीचर्स को, इस पे तो पूरे पूरे अब फील्ड्स बन चुके हैं कि लोग पहले कहते हैं कि बंदा लबो कि ये रखें कि ना रखें, हम इतनी तनख्वाह देनी है, ये पकड़े, जैसे कोई जॉब पे जाते हैं ना बड़ी कंपनीज में, तो वो रेज्यूमे सारी चेक कर लेते हैं, उनको समझ आता है, फिर उनको पकड़ कर ऐसे स्पेशलिस्टों के पास डालते हैं कि जॉब इसकी पर्सनैलिटी देखो कि ये हमारे इस काम का बोझ सहलेगा, तो हम दीन के लिए क्यों नहीं करते ये? इसलिए कि हम कहते हैं ये वक्त यहाँ, इस वक्त अच्छा था मैं 2 घंटे में सूरत यासीन पढ़ा देती तो वो ज़्यादा फायदा सवाब का होता, ये लोग तो इसको सवाब भी नहीं कहते होंगे कि ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा, लेकिन इंसान के लिए कुरान उतरा ना, और इंसान बहुत कीमती चीज़ है। मैं तो अक्सर सोचती हूँ और मुझे तकलीफ़ होती है कि कई लोग मिस हैंडलिंग की वजह से दुनिया से नाकाम जा रहे हैं, है मशीन सही, आपको चलानी नहीं आई, माएँ किल कर देती हैं अपने बच्चों की पर्सनैलिटीज़, एक को दूसरे से तकाबुल, दूसरे तू ऐसा, बड़ा ऐसा, छोटा ऐसा, जिसकी जो खूबी है आप उसके अंदर उभारिए। और मिसाल देती हूँ कि अब मैं शुरू में आऊँ और मैं आपसे कहूँ आप आए नहीं, जो आए नहीं होते हम उनके बारे में बातें कर रहे हैं, वो आए क्यों नहीं, वो है ही नहीं, जो आए हुए चार उनको ही आप सुनाते जाएँ कि जी आप लेट आते हैं, लोगों को शौक नहीं, वक्त पे नहीं आते, रोल कॉल मिस हो गई, तो जो चार आए थे उनको क्या, वो तो आए पड़े, ये तो उनको सुनाइए जो नहीं है, ये बात शुरू में नहीं इसको एंड पे करें, समझ गए ना? तो ये चीज़ें आपको हमें बहुत जगह फ़ायदा देंगी। शादियां करते हैं आप, ज़रा सा अगर और भी जो इतना कुछ पूछते हैं तो उसमें ज़रा सा पर्सनैलिटी को भी ग्रैब करें, पर्सनैलिटीज़ को अगर हम थोड़ा टच करें तो फिर भी कम से कम इंसान को ये तो समझ आ जाता है ना कि मैंने किस चीज़ को डील करना है। तो बहरहाल थके तो नहीं, कुछ और पढ़ा दूँ आगे, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये दुआ करें कि अल्लाह ने जो हमारे अंदर टैलेंट भरा है ना उसको इंसानियत को दे के जाएँ, वी नीड टू डाई एम्प्टी, हमने खाली हाथ दुनिया से जाना है, अल्लाह की नेमतें अल्लाह के बंदों के साथ।